ओम शांति। एक शहर में एक गुरु और उसका शिष्य प्रवेश करते हैं और पिछले दो दिन से उन्होंने ठीक से भोजन नहीं किया है। दोनों भूखे हैं। रात का समय है। शिष्य कहता है अब क्या होगा। गुरु कुछ नहीं कहते। एक सुनसान स्थान पर गुरु बैठ जाते हैं, आंखें बंद करके ध्यान लगा दे। 15-20 मिनट तक आंखें बंद करके रहते हैं और फिर आंखें खोलते हैं और कहते हैं चलो हमारा भोजन के लिए इंतजार हो रहा है। और वो गुरु अपने शिष्य को ले जाते हैं इधर गली उधर गली और करते 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 एक होटल के पास पहुंचते हैं। और होटल का जो मैनेजर होता है वो कहता है आइए मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आपके लिए भोजन तैयार है। वो अंदर जाते हैं भोजन करते हैं। वो शिष्य पूछता है आपने आपको कैसे पता कि यही वो होटल है और यही वो मैनेजर है और ये हमारा इंतजार कर रहा है, ये कैसे हो गया। वो गुरु कहते हैं मैं जब ध्यान में बैठा तो मैंने अपने सामने एक दृश्य क्रिएट किया, निर्माण किया कि इस शहर का सबसे अच्छा जो होटल है उसका जो मैनेजर है उसको मैंने अपनी आंखों के सामने लाया और सारी एकाग्रता सारी चेतना को एकाग्र कर दिया और उसको अपने सामने इमर्ज किया और उसको आदेश दिया कि हम तुम्हारे यहां भोजन करने आ रहे हैं, तुम तैयार रहो। और मैंने जो संदेश उसको भेजा टेलीपैथिक मैसेज वो उस तक पहुंच गया और उसने वही किया जो हमने उसको आदेश दिया था। गुरु शिष्य कहता है ये कैसे हो सकता है, क्या ये संभव है। गुरु कहता है हां, क्योंकि ये सारा संसार एक समंदर है प्रकंपनों का, वाइब्रेशंस का। आत्माएं हैं बहुत सारी धरती पर, सभी आत्माएं जुड़ी हुई है और यदि दो आत्माएं आपस में कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करें और संपूर्ण एकाग्र हो जाए तो बिना किसी साधन के एक व्यक्ति से संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। इस पर साइंस ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं जिसको कहते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी में एक होता है सेंडर भेजने वाला, एक होता है रिसीवर पकड़ने वाला, बीच में एक दीवार, एक को यहां रखते एक को यहां, और एक व्यक्ति यहां से संदेश भेजता है उस व्यक्ति तक। इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। उसमें कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप, एक रिसीवर चाहिए, एक सेंडर भेजने वाला और ग्रहण करने वाला। जो भेजने वाला होगा वो जिसको भेज रहा है इतना क्लियर देखेगा, अगर उसका कोई चित्र है तो चित्र को देखेगा, मूर्ति है तो मूर्ति को देखेगा। और फिर ये सोचते हैं उसमें कि जैसे एक ट्यूब है, मुझसे उस आत्मा तक एक ट्यूब है और मैं जो मुझे उसको कहना है इस ट्यूब के द्वारा उस तक भेज रहा हूं और वो उस तक जा रहे हैं और पूर्ण विश्वास है कि जो मैं भेज रहा हूं वो उस तक पहुंच रहा है। और जो दूसरी तरफ बैठता है व्यक्ति रिसीवर, वो ये सोचता है कि मुझे अपने मन को खाली कर देना है और वहां से कुछ संदेश आ रहा है मुझे वो रिसीव करना है। और ऐसे बहुत सारे सफल प्रयोग किए गए और बाद में एक्सपेरिमेंट पूरा होता है। एक स्टार्टिंग टाइम है, एक एंड टाइम है, स्टॉप करो। और उसके बाद में दोनों व्यक्ति मिलते हैं और वेरीफाई करते हैं। जिसने रिसीव किया वो लिखता है क्या क्या आया मन में और वेरीफाई किया जाता है कि हाँ ये भेजा था और मैंने ये कैच किया। इस तरह के साइंस के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है। विदेश में कभी एक व्यक्ति था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसकी आंखों में बहुत सारी चीजें दिखती थी, फोटोग्राफ्स लिए जाते थे आंखों के, रेटिना के। वो वहां विदेश में बैठ के, अमेरिका में बैठ के, अहमदाबाद में क्या हो रहा है उसकी आंखों में दिखता था, और उसके जो फोटोग्राफ्स लिए थे वो आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पर, किस तरह के वो फोटोग्राफ्स थे वो भी सब दिखता था। ऐसे संसार में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। इन प्रयोगों को विज्ञान पूर्ण रीति से नहीं मानता, विज्ञान कहता है ये सूडो साइंस है, झूठा विज्ञान, पर है तो जरूर, पैरासाइकोलॉजी इसको कहते हैं, जिसमें इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता पर वो है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जब हिटलर था, दो कैदी अलग अलग कमरे में, एक कैदी को दिखाया गया दूसरा कैदी कैसे मर रहा है, एक जहरीला सांप कोबरा छोड़ा गया उस व्यक्ति के कमरे में और उस व्यक्ति को कोबरा ने काटा, जिसको पहले से ही मृत्यु दंड की सजा थी, और वो व्यक्ति तुरंत मर गया, मुंह से फेस आने लगे और मर गया। अब जो दूसरा कैदी था उसको बताया गया कि कल सुबह तुमको भी ऐसा ही मारा जाएगा, रात भर नींद नहीं, डर, क्योंकि इतना खतरनाक कोबरा है वो, डंक मारते ही व्यक्ति खलास। दूसरे दिन उसके कमरे में वही काला कोबरा छोड़ा गया और वो इतना डरा हुआ, इतना डरा हुआ, इतना सहमा हुआ, नहीं 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 नहीं, इधर मुंह कर लिया और उसने काटा कोबरा और वो मर गया। पर वास्तव में उसको कोबरा ने काटा ही नहीं, वो कोबरा को खाली दिखाया गया और उस पर पेन से निशान कर दिए गए, पर वो व्यक्ति मर गया केवल पेन के निशान से। और उसके खून की जब जांच हुई तो उसमें कोबरा का जहर निकला, स्नेक वेनम। ये ऐसी सब घटनाएं हैं जो विज्ञान से परे है, इसके लिए विज्ञान कहता है ये सूडो साइंस है। तो सारा संसार वाइब्रेशन से बना हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये मोबाइल स्टेबल है, एक जगह पर है, पर एक जगह नहीं है, ये हिल रहा है। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखो, फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स सब वाइब्रेट हो रहे हैं, सब कुछ, ये माइक और ये दोनों वाइब्रेट हो रहे हैं। ये संसार वाइब्रेशन से बना हुआ है और हर चीज वाइब्रेट हो रही है, और जब हर स्थूल वस्तु वाइब्रेट हो रही है तो सबसे चैतन्य इस संसार में आत्मा है, आत्मा भी वाइब्रेट हो रही है, हर संकल्प वाइब्रेट हो रहा है, हर संकल्प से प्रकंपन निकल रहे हैं और जो दूर दूर तक फैल रहे हैं। साइकोलॉजी में और एक शब्द है, आकाशिक रिकॉर्ड्स। हिटलर ने क्या कहा था वो अभी भी आकाश में है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कहा था वो अब भी आकाश में है, कुछ भी मिटता नहीं है, उसको आकाशिक रिकॉर्ड्स कहा गया। महात्मा गांधी ने क्या कहा था तब वो आकाश में, चाणक्य ने क्या कहा था वो भी आकाश में है, प्रिजर्व्ड एज इट इज। तो ऐसे बहुत से सिद्धांत है विज्ञान के, मनोविज्ञान के, परामनोविज्ञान के, पैरासाइकोलॉजी, जो मनुष्य की बुद्धि से परे है। जैसे दिखाया है भारत में पति युद्ध कर खेलने गया है और वहां पति को कोई मारता है और इधर हाथ का वो थाली गिर जाती है, उस थाली गिरने से और उसके लगने से कोई लेना देना नहीं है, पर हुआ है, होता है, दिखाया है, दिया बुझ गया। बेटा बहुत दूर है उधर विदेश में, उसको अचानक बुखार आ गया, इधर मां परेशान होती है कुछ तो हुआ है। महा रामायण में दिखाया उधर पिता की मृत्यु हो गई, उधर भरत ननिहाल में है, उसको पता चल गया कुछ तो हो रहा है। ये सब क्या है, एक आत्मा दूसरी आत्मा से जुड़ी हुई है। और जब कॉन्शियसली हम जानकर अपने संकल्प किसी दूसरी आत्मा में डालना चाहते हैं तो वो डाले जा सकते हैं। इसी प्रक्रिया को सकाश कहते हैं। सकाश पता नहीं किस भाषा का शब्द है या बाबा ने ही पहली बार यूज किया है। इसको इंग्लिश में कहते हैं नियोलॉजिज्म, नव शब्द। ऐसा शब्द किसी भाषा में नहीं है, बाबा ने निर्माण किया है। और सबसे पहली बार इसका प्रयोग 1968 में विश्व किशोर भाऊ पुणे में थे, एडमिट थे, बीमार थे। ब्रह्मा बाबा रात भर जागते रहे। सुबह बाबा को पूछा क्या कर रहे थे, बाबा ने कहा मैं सकाश दे रहा था बच्चे को। तो सकाश अर्थात प्रकंपन, सकाश अर्थात प्योर एनर्जी, प्योर एंड पॉजिटिव एनर्जी। और हम जिसको चाहे उसको इमर्ज करके सकाश दे सकते हैं। और ये हमारी बहुत बड़ी एक सेवा है। एक है स्थूल सेवा, एक है यज्ञ सेवा, सूक्ष्म सेवा में है मनसा सेवा। और मनसा सेवा का माध्यम क्या है, सकाश। ढेर सारे प्रश्न है सकाश के विषय में। पहला, सकाश क्या है? दूसरा, सकाश कौन दे सकता है? तीसरा, सकाश कब देनी है? चौथा, सकाश किसको देनी है? पांचवा, सकाश देने की विधि क्या है? अगला, यह कैसे पता चले कि हमने सकाश दी और वो मिल गई सामने वाले को? अगला, सकाश कहां कहां से दी जा सकती है? अगला प्रश्न, सकाश में कठिनाई या क्या क्या है? तो इतने सारे प्रश्न हैं। संक्षिप्त में हम देखेंगे क्या क्या करना है। पहले तो परिभाषा, सकाश अर्थात प्योर पॉजिटिव एनर्जी। दूसरा, सकाश कौन दे सकता है, उस व्यक्ति में क्या होना चाहिए? तो सबसे पहली तो प्यूरिटी। जब तक प्यूरिटी नहीं, हमारी सकाश दूसरों को नहीं जाएगी। दूसरा, वैराग। माताएं आकर कहती है हमारी बेटी को सकाश देनी है, क्या करूं, इतनी सकाश देती हूं उसको सुबह सुबह, कुछ नहीं होता है। बाबा के महावाक्य है, बिना बेहद के वैराग के सकाश देने की सेवा नहीं हो सकती। जिसको सकाश देना है उससे हम डिटैच चाहिए। कोई कहे मैं अपने बेटे को सकाश देता हूं, इतना सकाश देता हूं पर होता ही नहीं कुछ। एक मां थी जो चाहती थी कि मेरी बेटी ब्रह्मा कुमारी बन जाए, तो सुबह 2 बजे उठती थी वो, और 2 बजे उठ के बाथरूम में जाके बकेट और इसकी बहुत आवाज करती थी ताकि बेटी उठ जाए। पर बेटी ये देखकर तो और ही अच्छे से सोती थी। और फिर माताजी योग करती थी, और जब 4 बजे तक भी बेटी नहीं उठती थी तो उसके बेड के सामने जाकर उसको सकाश, उठ जा उठ जा। और जब बेटी देखती थी मां खड़ी है तो और ही अच्छे से सो जाती थी। किसी का कल्याण हो जाए बहुत अच्छी भावना है, पर मोह इतना है, लगाव इतना है, अटैचमेंट इतना है, नहीं जाएगी सकाश। मुरलियों में आता है, माता कहती है बाबा क्या करूं मेरे पति की बुद्धि का ताला खुल जाए। बाप कहते हैं कभी भारत की बुद्धि का ताला खुल जाए ऐसा कहां कहे, दूसरों के पतियों के बुद्धि का ताला खुल जाए ऐसा कहा क्या? स्वार्थ है भरा पड़ा, नहीं होगा। मेरे पति दारू पीता है, उसकी दारू छूट जाए, बाबा कुछ करो। संसार में इतने सारे हैं पियक्कड़, उनके लिए तो कभी कुछ नहीं कहा। माताएं भी मधुबन में आती है, ऐसे ऐसे प्रश्न करती है कि बात मत पूछो। एक माता आई, कहने लगी आज मेरी बेटी की लड़का देखने आने वाला है, आप प्लीज सकाश देना ना, शादी पक्की हो जानी चाहिए। क्या करे, देखे सकाश। एक माता मिली थी किसी सेंटर पर, भट्टी करने गए थे। उसने कहा मेरी बेटी की शादी है, मधुबन में इनविटेशन कार्ड भेजू क्या? मधुबन में सन्यासी रहते हैं वहां। सकाश देने के लिए चाहिए प्यूरिटी, सकाश देने के लिए चाहिए अनासक्त वृत्ति, वैराग। सारे संसार को सकाश दो। हाँ, फिर जो व्यक्ति है जिसको हम चाहते हैं, मां बाप, बहन भाई, पति पत्नी, उसको उसके बीच में इमर्ज करो और उसको भी सकाश दे दो, जैसे बाकियों को दी वो भी एक आत्मा है बस, और फिर आगे बढ़ जाओ प्रकृति को सकाश, इधर सकाश उधर सकाश। और दूसरी और एक चीज है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश आने के लिए सकाश दो। किस किसने सकाश दी थी बारिश के लिए, हाथ खड़ा करना। कितने लोग मरे। हाँ तो बारिश तो आने के लिए सकाश दी थी ना, तो सहयोग तो दिया ना, तो कितने मरे। बारिश आनी है नहीं आनी है ये सब हमको नहीं करना है। यहां काल पड़ा हुआ है, योग भट्टी करो फिर बारिश आ जाएगी। हमें प्रकृति को सकाश देनी है पवित्रता की, बस छोड़ दो। बारिश आनी है नहीं आनी है ये उसका काम है, ये स्वार्थ है। बारिश नहीं है, बारिश नहीं है, सकाश दी सकाश दी, और ऐसी बारिश आई मूसलाधार, अब दूसरी सकाश दो बारिश रोकने की। प्रकृति के पांचों तत्वों को किरणें देनी है प्यूरिटी की, बस बारिश आनी नहीं आनी उसका काम है, वो फिर हमारा स्वार्थ हो गया। दादी जान की लंदन गई और वो बहनें बैठी थी, दादी ने कहा क्या कर रही हो, उन्होंने कहा जगह नहीं मिल रही है, बहुत पुरानी बात है 70s की, इसके लिए योग कर रहे जगह मिलने के लिए सेंटर के लिए। दादी ने कहा क्या टाइम वेस्ट कर रही हो, हमारी सकाश निस्वार्थ हो, किसी को ज्ञान में लाना न लाना ये सब चीजें हमको नहीं करनी। जिसके भाग्य होगा आएगा, नहीं होगा नहीं आएगा। सकाश देने के लिए प्यूरिटी, दूसरा वैराग, तीसरा डबल लाइट स्थिति, हल्कापन चाहिए, कोई सकाश दी जा सकती। चौथा बेहद की भावनाएं चाहिए, हे विश्वची माजे घर वसुधैव कुटुंबकम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा विश्व मेरा परिवार है, सब कुछ मेरे अपने हैं, सबका कल्याण हो जाए, जो जे वांछील तोते लाहो प्राणी जात, सभी का कल्याण, सबकी शुभ इच्छाएं आशाएं पूर्ण हो, ऐसी भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फॉर द गुड ऑफ मेनी फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेनी, ये भावनाएं हो, ऐसी ऊंची भावना हो, ये सारा सारी पृथ्वी मेरी है, सभी मेरे अपने हैं, तब सकाश जाएगी, नहीं तो नहीं सकाश जाएगी। बहुत ऊंची भावनाएं और शुभ भावनाएं हो, शुभ कामनाएं हो। दुरितांचे तिमिर जावो विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, संसार का तिमिर नाश हो, ये भावना। और उसके बाद में जीवन अनुशासित हो, श्रीमत पर हो, तो सकाश जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, इसको यहीं छोड़ते हैं। दूसरा प्रश्न, सकाश कब देनी है, कब देंगे, अमृत वेला नुमा शाम के समय। और बाबा ने तो मुरली में यहां तक कहा है, अगर रात में अचानक नींद खुल जाती, आंख खुल जाती है, सकाश दो और फिर सो जाओ। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, यह है समय। फिर है कुछ कुछ परिस्थितियां, जैसे अचानक कोई विघ्न आ गया तो विशेष योग भट्टी का आयोजन किया जाता है, सकाश यहां का विघ्न दूर हो जाए, उसमें भी निस्वार्थ भावना है, यह भगवान का यज्ञ है, यज्ञ पर यह इतना बड़ा विघ्न आ गया, यह विघ्न हट जाए। या किसी सेवा के लिए जा रहे, जैसे आज शाम को सेंटर पर 50 डॉक्टर आने वाले हैं, प्रोग्राम है, या बाहर किसी कंपनी में जा रहे हैं, वहां पर बहुत सारे प्रोफेशनल्स है, उनके सामने भाषण देने जाना है, या फिर शाम को कोई भाई आने वाला है कोर्स करने, आधा कोर्स तो सूक्ष्म वतन में होना चाहिए, आधा नीचे, अमृत वेला ही जिसका कोर्स कर रहे उसको इमर्ज करना और उसको वहीं पर आत्मा की अनुभूति करा देना और परमात्मा से प्यार उसमें भर देना, बस फिर नीचे बहुत कुछ कम काम करना पड़ेगा। नहीं तो तर्क करेंगे ये 5000 साल का ही चक्र क्यों है, ये डायनासोर कहां चले गए, ये रिपीट ही क्यों होता है, किसने कहा रिपीट होता है, फिर तुम्हारे सृष्टि चक्र में झाड़ जो है उसमें जैन धर्म कहां है, वो तो दिखाया नहीं तुमने, 1000 प्रश्न पूछेंगे। कार्बन डेटिंग का क्या हुआ, उसमें तो ऐसा नहीं है, तो क्या हम सतयुग में आएंगे ही नहीं, तुम ही आओगे। तो जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, ये सतयुग में नहीं आएंगे, तुम उनसे भी ज्यादा महान हो क्या? तो ये इतने सारे जो भक्त है सबने झूठ कहा और तुम ही निकले ज्ञानी, ऐसे 1000 प्रश्न पूछेंगे। इसलिए क्या करना है, अमृत वेले ही आत्मा को इमर्ज करना है सूक्ष्म उतन में, जिसका शाम को कोर्स करना है, और आधा कोर्स तो उसको वहीं करा देना, सारे प्रश्न समाप्त, कुछ नहीं पूछेगा। गुरु ऊपर बैठा है और शिष्य सामने है, ढेर सारे भागवत में वर्णन है, गुरु कुछ नहीं कह रहा है, शिष्य कुछ पूछ नहीं रहे। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशया, गुरु का व्याख्यान मौन का है और शिष्य बिना कुछ पूछे ही सबके संशय दूर हो रहे। मौन में वो पावर है, शक्ति है। तो सकाश कब देनी है, टाइमिंग, सकाश किन किन परिस्थितियों में देनी है, जब कोई सेवा करने जा रहे तब, या जब कोई विघ्न आ जाए तब। और तीसरा, हमेशा ही देते रहो। ट्रैफिक में फंस गए क्या करेंगे, 2 ऑप्शन है, एक तो सरकार को गालियां देना कि यहां पे ट्रैफिक ही ऐसी है, रोड ही ऐसा है, और दूसरा जितनी आत्माएं हैं सबको वाइब्रेशंस। तो ये एक प्रश्न। अगला प्रश्न है, सकाश कैसे दे, कैसे देंगे, आत्माओं को इमर्ज करना है, आत्माओं से बात करनी है। कहां से देंगे, सूक्ष्म वतन से दिया जा सकती है, परम धाम से दे सकते हैं, जहां बैठे हैं वहीं से दे सकते हैं, या फरिश्ता रूप धारण करके आत्माओं के पास जाके दे सकते हैं जहां वो रहती है, या उनको अपने पास बुलाओ या आप उनके पास जाओ। और पूर्ण विश्वास से देनी है कि हम जो दे रहे हैं वो जा रही है, नहीं तो डाउट होता है कि हमने दी पता नहीं मिली कि नहीं मिली। जो पुलिस होते हैं उनके पास एक कुत्ता होता है, उसको कहते हैं स्निफर डॉग। अगर चोर ने यहां चोरी करके गया, वो कुत्ता आता है, सूंघता है और सूंघते सूंघते जाकर चोर को पकड़ लेता है। कैसे, एक चोर निकृष्ट कर्म कर रहा है, वो भी अपने वाइब्रेशंस छोड़कर जाता है, उसी वाइब्रेशंस के पीछा करते करते वो डॉग उस चोर को पकड़ लेता है। हम इतने श्रेष्ठ संकल्प निर्माण कर रहे हैं तो हमारे वाइब्रेशन नहीं जाएंगे, एक चोर के जा सकते तो क्या हमारे नहीं जाएंगे? अब एक चोर वाइब्रेशन छोड़ देता है, हम कौन से छोड़ेंगे, इतने श्रेष्ठ संकल्प तो होगा। विश्वास रखना है, हम जो वाइब्रेशन दे रहे हैं वो जा रहे हैं। और किसको वाइब्रेशन देने हैं, किसको सकाश देनी है, दुखी आत्माओं को, अशांत आत्माओं को, पतित आत्माओं को, विकारी आत्माओं को, अतृप्त आत्माओं को, भटकती आत्माओं को। बहुत दुखी है संसार, अथाह दुख है संसार में, ऐसा कोई घर नहीं है जहां दुख नहीं है। तो संसार की आत्माओं को, भक्तों को सकाश, सन्यासियों को सकाश, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, राज सत्ता, 3 सत्ताओं को सकाश, 5 खंडों को सकाश, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, 5 खंड है, एक एक खंड के ऊपर जाकर सकाश। 5 महासागर है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर, पानी को सकाश, आकाश को सकाश, वायु को सकाश, अग्नि को सकाश, 5 तत्वों को सकाश, और एक सकाश, ब्राह्मणों को भी सकाश की आवश्यकता है, ब्राह्मण भी बहुत भटक रहे हैं। जितने सेवा केंद्र है, अपना फरिश्ता रूप धारण करना है, असंख्य फरिश्ता रूप प्रकट करना, एक एक फरिश्ता एक एक सेवा केंद्र के ऊपर। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। एक एक सेवा केंद्र का वायुमंडल शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, एक एक सेवा केंद्र निर्विघ्न हो जाए, मधुबन निर्विघ्न हो जाए, ये सकाश। तो सकाश किसको देनी है और कहां से देनी है और कैसे देनी है, आह्वान करके, बातें कर उनको तिलक देना, सिर पे हाथ रखना, कभी परमधाम से, कभी स्वयं को शांति स्तंभ समझना है, कभी स्वयं को लाइट हाउस समझना है, कभी स्वयं को फरिश्ता समझना है, कभी मुझ आत्मा से किरणें फैल रही है। अलग 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 विधियां है सकाश देने की। और यह कैसे पता चल जाए कि हमने जो सकाश दी वो मिली उसको, एकदम गहरी अनुभूति होगी, डीप एक्सपीरियंस, जिससे हमको यह पता चल जाएगा कि हमने जो सकाश दी वो गई। और किसी भी आत्मा को हम इमर्ज कर सकते हो संसार के, किसी भी सकाश के लिए किसी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, पैसों की आवश्यकता नहीं, अपॉर्चुनिटी की आवश्यकता नहीं, चांस की, अवसर की आवश्यकता नहीं, किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं। ये हमारा एरिया, तुम्हारा एरिया, किधर भी घुस जाओ और किसी को भी सकाश दी जा सकती। ओम शांति।